ओम शांति। हम सभी बाबा के विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं। शिव बाबा विश्व कल्याणकारी हैं, तो हमें भी अपने ही समान विश्व कल्याणकारी बनाते हैं। एक स्थान के नहीं, एक सेंटर के नहीं, एक शहर के नहीं, लेकिन बाबा ने क्या टाइटल दिया? विश्व कल्याणकारी। कोई कहेगा हम सिर्फ सेंटर कल्याणकारी हैं या हमारे ही शहर के कल्याणकारी हैं? तो विश्व कल्याण करने के लिए हम कई प्रकार की सेवाएं करते हैं, और उसमें सबसे पहली सेवा है स्व की सेवा। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन बाबा हमें कहते हैं। तो अभी हमने कुछ समय पहले बाबा की मुरली सुनी थी, निरंतर सेवाधारी। याद है निरंतर सेवाधारी कैसे बने? तो बाबा ने चार प्रकार की सेवाएं बताई, और उसमें जो मुख्य सेवा सबसे पहले नंबर पर थी वो थी स्व की सेवा। तो स्व परिवर्तन हमारा स्व की सेवा से होगा। जो भी हमारे चार सब्जेक्ट हैं, चार सब्जेक्ट में ज्ञान, योग, धारणा और सेवा तो है ही। तो ज्ञान, योग, धारणा में बाबा ने कहा स्वयं को संपन्न बनाना, स्वयं को पास विद ऑनर बनाना। तो जितना हम स्वयं संपन्न और संपूर्ण बनते हैं, उतना स्वतः ही हमारे संपन्न स्वरूप के द्वारा अन्य आत्माओं की सेवा होती है। जिसे हम कहेंगे हमारे चेहरे और चलन के द्वारा आत्माओं को प्रेरणा मिलती है, वो अपने आप बाबा के समीप आएंगे कि इन्हें ऐसी क्या प्राप्ति हुई, कैसे इनका जीवन इतना श्रेष्ठ बना। तो उस अनुसार उनका जीवन भी परिवर्तन होने की हिम्मत उनके अंदर आ जाती है। फिर दूसरी सेवा यज्ञ सेवा है, जो हम सब करते हैं समय समय पर। जब भी प्रोग्राम्स होते हैं, तो चाहे हम सेंटर पर हैं, चाहे हम मधुबन यज्ञ में हैं, फिर जो भी सेवा हमें हमारी विशेषता के अनुसार मिलती है, उस अनुसार चाहे वो स्थूल सेवा है, सूक्ष्म सेवा है, उसमें हम सहयोग देते हैं, धन का भी हम सहयोग देते हैं। तो यज्ञ सेवा हम इस तरह से करते हैं। फिर है विश्व सेवा वाणी के द्वारा, ज्ञान सुना करके सेवा करना। उसमें हम आत्माओं की जो संख्या है वो अधिक संख्या में पहुंच सकते हैं, लेकिन पूरे विश्व तक नहीं पहुंच सकते। चलो कोई लेक्चर करते हैं, भाषण टीवी पर अगर भाषण करते हैं तो चलो हजारों लाखों तक पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर भी पूरे विश्व तक तो नहीं पहुंच सकते। और वाणी की सेवा में थोड़ा अभ्यास भी चाहिए। जैसे कर्मणा सेवा सभी कर सकते हैं, क्योंकि सभी को कर्मणा का अभ्यास है, उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। लेकिन वाणी की सेवा के लिए थोड़ा सा अभ्यास चाहिए। थोड़ा अभ्यास के बाद हम वाणी की सेवा भी कर सकते हैं, और नहीं तो हम अपने मित्र संबंधियों को अपने अनुभव सुना करके भी सेवा कर सकते। तो अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, मित्र संबंधियों में हम अपने अनुभव सुना करके भी कि ज्ञान से हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन आया, तो भी हम सेवा कर सकते हैं, ताकि उनका उलाहना ना रहे। बाबा हमेशा कहते हैं कि अंत समय में जब आत्माओं को पता चलेगा कि भगवान आया और हमें मालूम नहीं चला, तो वो आपको उलाहना देंगे कि आपने हमें बताया क्यों नहीं। तो हमें संदेश तो अपने संपर्क वाली सभी आत्माओं को दे देना है, फिर उनका भाग्य है कि वो बाबा से वर्षा लेती हैं या नहीं लेती हैं। लेकिन जो बेहद की सेवा है, जिसे हम विश्व सेवाधारी का हमारा टाइटल सिद्ध होता है, वो सेवा है मनसा सेवा। मनसा सेवा हम एक स्थान पर बैठे हुए पूरे विश्व की आत्माओं तक वाइब्रेशंस या सकाश दे सकते हैं। और सूक्ष्म सेवा है, ऐसे तो हमें बहुत सहज लगती है मनसा सेवा, एक स्थान पर बैठे हुए करना कुछ नहीं है, एक स्थान पर बैठे हुए बाबा को याद करो और सारी दुनिया की आत्माओं को जो सहयोग देना चाहो, शांति देना चाहो, शक्ति देना चाहो, हाँ दे सकते हैं, लेकिन ये जितनी सहज लगती है उतनी सहज नहीं है। क्यों सहज नहीं है? क्योंकि मन सूक्ष्म है, और मन सूक्ष्म है इसीलिए शक्तिशाली तो है, उतना प्रभाव पड़ता है उसका, लेकिन उतना कंट्रोल चाहिए। मन जब तक एकाग्र नहीं होगा, जिसको बाबा कहते हैं मन लाइट हाउस माइट हाउस की स्थिति में हो, सदा ही हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना हो, माना उसकी कुछ विधियां हैं, उस विधि पूर्वक यानी बाबा के श्रीमत प्रमाण जब हमारा मन कार्य करता है तब हमारी मनसा सेवा सफल होती है। तो हम देखते हैं आज विज्ञान के युग में भी जो चीजें जितनी सूक्ष्म हैं वो उतनी शक्तिशाली हैं। कैसे सूक्ष्म अधिक शक्तिशाली होता है वो हम समझ सकते हैं। आज देखो पुराने जमाने के फोन होते थे, कितना बड़ा फोन होता था, पर आप केवल उससे फोन ही कर सकते थे। लेकिन जैसे जैसे फोन का आकार कम होता गया वैसे वैसे उसकी पावर बढ़ती गई। आज जो स्मार्टफोन हमारे हाथ में होता है वो केवल फोन नहीं है, फोन के साथ साथ वो टॉर्च भी है, वो कैमरा भी है, वीडियो भी है, वीडियो चला सकते हैं उसमें, ऑडियो चला सकते हैं यानी MP3 भी है उसमें, TV भी है उसमें, इंटरनेट है। इंटरनेट माना सारी दुनिया की कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए बस एक क्लिक आपने किया और जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आपने वो आपके सामने आ जाएगी, माना दुनिया आपकी मुट्ठी में, ऐसा कहेंगे। तो कितना छोटा फोन और कितना बड़ा उसका उपयोग है, कितनी चीजें उसमें समा गई। घड़ी भी है उसके अंदर, अलग से घड़ी रखने की भी जरूरत नहीं है। आज एक एटॉमिक वेपन हम देखते हैं, कितने छोटे बम होते हैं लेकिन उस बम में पावर कितनी है, लाखों को एक साथ वो पूरा का पूरा शहर वो उड़ा सकता है, इतनी पावर है। तो जितना छोटे होते गए उतना ही उसकी पावर बढ़ती गई। आत्मा का हम जानते हैं, इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है जो हमें आंखों से भी नहीं दिखाई देती। तो आज विज्ञान के युग में हम उसको समझ सकते हैं कि वो जो छोटी सी सिम कार्ड होती है ना, उसकी जितनी मेमोरी है, जितने GB का वो है या TB का है जो भी, उतना ही उसके अंदर डेटा फीड होता है। साइज कितना होता है? एकदम छोटा सा। तो ऐसे ही हमारी आत्मा भी जितनी सूक्ष्म है उतनी ही पावरफुल है, पर उसका सही उपयोग करना यानी जो सदुपयोग है जिसको हम कहेंगे, तब फिर हमारी मनसा सेवा सफल होती है। कई बार हम ये देखते हैं कि हम करते तो हैं मनसा सेवा, लेकिन अगर विधि पूर्वक नहीं कर रहे तो उसके परिणाम हमें नहीं मिलते। बाबा कहते हैं उसके लिए हमारी मनसा सदा ही शुभ चाहिए, श्रेष्ठ चाहिए, परोपकार की सदा भावना हो, यानी कोई हमारे प्रति अपकारी भी है तो भी उसके प्रति उपकार की भावना हो, सदा दातापन की भावना हो, सदा रहम की भावना हो, और अपने ही परिवर्तन की भावना हो। ऐसे नहीं कि वो भी तो बदल जाए, हम इतना कर रहे हैं ये भी तो थोड़ा बदलें, ये भी भावना नहीं चाहिए। होता क्या है कि जब हम योग में बैठते हैं तब तो हम अपनी भावनाओं को इस तरह से रखते हैं, लेकिन जब हम व्यवहार में आते हैं जिन आत्माओं से हम कहेंगे कि हमें थोड़े विघ्न आते हैं, या जिनसे हमारे विचार नहीं मिलते हैं, या जिनसे हमारा कहीं टकराव हो जाता है, उनके प्रति हमारी भावनाएं कहीं ना कहीं बदलती रहती हैं। शुभ भावना सदा बनी रहे ऐसा नहीं हो पाता। तो व्यवहार में तो भावना बदल रही है और योग में हम शुभ भावना रख रहे हैं, तो वो विपरीत भावनाएं आपस में एक दो को माइनस कर देती हैं, और हमारा जो मनसा सहयोग उस आत्मा को मिलना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता है। फिर हम सोचते इतने समय से इनके लिए हम योग लगा रहे हैं, कुछ परिवर्तन तो दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? उसका कारण ये है। तो ये सूक्ष्म पुरुषार्थ है कि सदा ही हमारी शुभ भावना हो, ऐसे नहीं कि जो मेरे प्रति स्नेही सहयोगी है उसके प्रति तो मेरी शुभ भावना है, वो तो सभी का होता है। ज्ञान काल में भी ऐसा होता है कि जो हमारे प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं उनके प्रति हमारी भावनाएं अच्छी ही रहती हैं। प्रश्न कहाँ आता है, सहयोग किसको देना है, प्रश्न वही उठता है जो हमारे प्रति विपरीत भावनाएं रखते हैं, जो हमारे प्रति विरोध की भावनाएं रखते हैं। सेवा तो उनकी ही करनी है, परिवर्तन तो उनकी ही बात है। तो यहाँ हमारी लाइट हाउस माइट हाउस की स्थिति यानी मनसा पावरफुल चाहिए, हमारा मनोबल ऊंचा चाहिए, तभी हम प्रकाश दे सकेंगे। जैसे लाइट हाउस की लाइट माइलों तक जाती है, अगर कम पावर की लाइट होगी, जैसे 0 वॉट का बल्ब जलेगा तो कितनी सी लाइट होगी उसकी, तो उतनी लाइट अगर हमारी है तो हमारी मनसा काम नहीं करेगी। और वो एकाग्रता की जो शक्ति है, एकाग्रता की शक्ति से जो लाइट हाउस स्थिति हमारी बनती है, एकाग्रता माना बाबा कहता है कि एक की लगन में मगन हो जाना, या एक पावरफुल स्थिति में मन को स्थित कर लेना, या एक शुद्ध संकल्प में मन स्थित हो जाए और लंबे समय तक यानी कुछ समय तक मन उस संकल्प की अनुभूति में रहे, तो फिर उस संकल्प का प्रभाव सिद्धि देता है। दुनिया में भी जो संत महात्माएं सिद्धि दिखाते हैं उसका कारण एकाग्रता की शक्ति होती है, और उससे वो किसी का रोग दूर कर पाते हैं, या किसी को मन इच्छित फल चाहिए तो वो उसको वो फल की प्राप्ति करा देते हैं। वो संकल्प में इतनी पावर आ जाती है कि वो एक संकल्प किया उसके प्रति और वो काम उसका हो गया। ऐसा बहुत गुरु लोगों से लोग महसूस करते हैं और इसीलिए बहुत श्रद्धा होती है उनकी अपनी गुरुओं के प्रति। और हम साइंटिफिक रूप से भी देखते हैं, कुछ लोग ऐसे प्रयोग करके दिखाते हैं मन की एकाग्रता के प्रयोग, हमने खुद देखे हैं। मुझे याद है कि ये करीब 90s की बात है, आप में से भी कुछ भाई बहनों ने सुना होगा, एक यूरी गैलर करके साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक जिसे हम कहते हैं, वो इसराइल का एक साइकोलॉजिस्ट था, तो वो इंग्लैंड में लंदन में था और उनको निमंत्रण दिया गया अपने एक प्रोग्राम में। तो उसकी विशेषता थी कि वो जब अपने मन को एकाग्र कर लेता था तो वो जिस चीज को देखेगा और जो संकल्प करेगा बिल्कुल वैसा हो जाएगा। तो वो कार की चाबी को मोड़ सकता है, घड़ी की सुई को देखा और सोचे कि घड़ी बंद हो जाए तो घड़ी बंद हो जाएगी, घड़ी चालू हो जाए तो चालू हो जाएगी, और यहां तक कि वो हथेली पर कुछ अनाज या जैसे मूंग रखते हैं उनको अंकुरित भी करके दिखा सकता है। थोड़ा समय उसको उसने एकाग्रता से वो संकल्प किया और वो हथेली में ही मूंग अंकुरित करके दिखा दिए। तो वो लंदन के सबसे बड़े हॉल में प्रोग्राम रखा गया था, दादी जी के साथ उसका टॉक शो था, और उसने अपना ये सारा जो कहेंगे प्रदर्शन किया, अपनी जो भी उसकी कला थी उसको दिखाया। फिर दादी जी ने राजयोग का अभ्यास कराया, 10-15 मिनट दादी जी ने कमेंट्री दी और जितने भी लोग थे हॉल में वो एकदम जैसे पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया और डीप साइलेंस का एक्सपीरियंस सबने किया, उसने खुद भी किया जो वो साइकोलॉजिस्ट था। तो जब वो एक्सपीरियंस हुआ उसको तो उसे वो बहुत अच्छा लगा और उसने ये बात दादी को कही कि दादी जो मैंने ये कुछ जादुई प्रदर्शन जैसा ही कहेंगे इसको ये किया है, ये तो थोड़े समय की बात है, लेकिन जो संसार को जरूरत है वो वास्तव में शांति की जरूरत है, और ये शांति का अनुभव मैं नहीं करा सकता हूँ, ये जो आपने शांति का अनुभव कराया ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मन की शक्ति से जो बाबा ने हमें पावर दी है कि हम एक स्थान पर बैठे हुए शांति के वाइब्रेशंस पूरे विश्व में फैला सकते हैं और जो अशांत आत्माएं हैं उनको शांति का दान दे सकते हैं, तो ये राजयोग की उपलब्धि है। ऐसे ही हमने एक यहाँ मधुबन में शांतिवन में ही एक प्रोग्राम हुआ था, बिजनेस विंग का प्रोग्राम था और उसमें एक बहन आई थी, वो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, जो भारत में फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी हुई वो थी, वो कृति नाम था उसका। उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स दिखाए, हम भी थे उस प्रोग्राम में, मन की शक्ति के प्रयोग दिखाए। तो उसने जैसे, अब सब तो नहीं बता सकते, वो तो पूरा लंबा 1.5 घंटे का प्रोग्राम था, लेकिन कुछ जैसे मैं आपको उसकी झलक बताऊंगी कि जैसे उसने एक अपनी सीनियर बहन को स्टेज पे बुलाया और उसको कहा कि आप कुछ भी सोचो अपने मन में, जो आप सोचेंगे वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कि आपने क्या सोचा है। और वो जैसे कि वो बिठा दिया उनको और वो साइलेंस में बैठे रहे, जो भी सोचना था सोच रहे थे, और उसने एक पेपर पर लिख लिया, जो उसने कैच किया वो एक पेपर पर लिख लिया उसने। और फिर उसके बाद उनको बोला कि अब आप बताओ कि आपने क्या सोचा। तो उन्होंने बताया कि मैंने ये सोचा इस पीरियड में, जो भी 2 मिनट का पीरियड था। और उसने फिर वो पेपर उनके सामने लाया और बिल्कुल वैसा का वैसा ही लिखा था जो उन्होंने माइक पर बोला, कि वो जिस स्थान पर, जैसे वो अपने मन से लंदन गई, वो लंदन में दादी जानकी से मिली, और इसी तरह से वो पूरा का पूरा उसने कैच कर लिया। तो मन के वाइब्रेशंस करने की पावर, वो क्या सोच रहा है व्यक्ति, जिसको हम थॉट रीडिंग बोलते हैं, तो असंभव सा लगता है कि कैसे किसी के कोई विचार पढ़ सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। चलो भावनाओं को तो हम कैच कर सकते हैं, ये दुखी है, ये खुश है, ये उदास है, क्या फीलिंग्स होगी उसके मन में, ये हम नैनों की भाषा जिसको बाबा बोलता है ना आंखों से, ये गुस्से में है, ये तो हम समझ सकते हैं। लेकिन क्या विचार चल रहे हैं उसके मन में एज इट इज, पूरा उसको पढ़ लेना, ये तो सूक्ष्म शक्ति है। फिर उसने एक और प्रयोग, ऐसे बहुत सारे प्रयोग दिखाए, लेकिन एक और जो विशेष लगा था मुझे, उसने एक पॉलिथीन में बल्ब लिया और उस बल्ब को पॉलिथीन में इसलिए लिया क्योंकि अगर वो बल्ब टूटेगा तो कांच के टुकड़े स्टेज पर ना बिखर जाए, तो उसको एक पॉलिथीन में पैक करके और एक टेबल पर रखा। उसने कहा हम सब एक विचार करेंगे कि ये बल्ब फूट जाए, दूर रखा उसने, करीब 5-6 फीट दूर रखा उसे, और फिर खुद भी दूर खड़ी हो गई और उसने कहा कि मैं इसको, इस बल्ब को सिर्फ देखूंगी, मिनट लग सकते हैं, कुछ सेकंड में भी हो सकता है, और आप सब भी मुझे इसमें सहयोग देंगे, आपका भी यही विचार रहेगा कि ये बल्ब टूट जाए। और सभी ने जैसे उस बल्ब को देखना शुरू किया और 1 मिनट भी नहीं लगा कि वो पॉलीथीन के अंदर टुकड़े टुकड़े हो गया, दूर पड़ा हुआ बल्ब, किसी ने हाथ नहीं लगाया उसको। तो इसका मतलब मन की शक्ति इतनी पावरफुल है कि वो ऐसे स्थूल परिणाम भी दे सकती है। तो इसीलिए बाबा हमें मनसा सेवा की बात कहते हैं कि हम दूर बैठी हुई किन्हीं भी आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं, उनकी हिम्मत बढ़ा सकते हैं, उनमें उमंग उत्साह ला सकते हैं, निराश आत्माओं में हम आशा का संचार कर सकते हैं, यहां तक कि हम बीमार आत्माओं को भी सहयोग दे सकते हैं, तो दूसरी बीमार आत्माओं के स्वस्थ होने में सहयोग देना और खुद के स्वास्थ्य के लिए भी हम अपनी मन की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, ये सब हम ब्राह्मण आजकल करते भी हैं, हम सब इसको जानते भी हैं और अपने अपने स्तर पर इसका प्रयोग करके उस सफलता का भी हम अनुभव करते हैं। यथाशक्ति हमेशा बाबा कहते हैं हम सब नंबर वार है, हमारे मन की पावर भी नंबर वार है, तो जो उसमें जितना पावरफुल है वो उतना उस सफलता को अनुभव करता है। तो इसमें भी जो हमने बहुत परिणाम अनुभव किए, एज ए डॉक्टर जब मैं हॉस्पिटल में थी तब हमने कई मरीजों पर ऐसे प्रयोग किए, क्योंकि बाबा कई बार कहते हैं योग के प्रयोग करो, तो खासकर जब चैलेंजिंग स्थिति होती थी कि हाँ ये मरीज इस स्थिति में है कि ये बचेगा या जाएगा, तब फिर हम करते थे उनके लिए मनसा प्रयोग करते थे। और मैंने देखा कि जितना भी हमने किए, मैं बहुत विस्तार में तो अभी नहीं जाऊंगी क्योंकि ऐसे कई प्रयोग हमने किए और हमने देखा उसमें वो सफलता मिली, कि जहां लगता था कि नहीं संभव है वो भी जैसे संभव हो गया। और अभी कुछ समय पहले कुछ ही दिनों पहले की बात है, हमारे लौकिक पिताजी उनका समाचार मिला कि अचानक वो सीरियस हो गए, एकदम क्रिटिकल हो गए, अस्पताल में भर्ती हुए। हमको न्यूज मिली, अब हम एकदम तो नहीं जा सकते। तो फिर हमने योग लगाया, क्योंकि अनुभव है पहले भी और लोगों के प्रति भी जब योग लगाया, तो फिर बाबा के सामने ये संकल्प रखा कि जब तक हम पहुंचते हैं या जो भी हम सहयोग दे सकते हैं, तब तक मनसा से बाबा की जिम्मेवारी है। और हमने जैसे एक वो शुभ भावना का सहयोग दिया उस आत्मा के प्रति, तो मैंने देखा कि और भी हमारे परिवार में भी सब जो ज्ञान में चलते हैं, वो सभी ने भी वो सहयोग दिया। तो जो उनका अनुभव था, वो जैसे वो मशीनों पर हैं, तो उनको वो ठीक होने के बाद, हम पहुंच गए बाद में, तो ठीक होने के बाद जो उन्होंने अपना अनुभव सुनाया कि मैंने ऐसा महसूस किया कि जैसे मैं बाबा की गोदी में हूं और बाबा ने मुझे जो प्यार दिया उस समय में, वो दो दिन का पीरियड था, वो समय में जो बाबा ने प्यार दिया, आज तक मैंने अपने ज्ञान के इतने जीवन में वैसा प्यार अनुभव नहीं किया। और तीसरी बात बाबा ने मुझे कही कि बाबा सर्वशक्तिमान है और सर्वशक्तिमान की शक्तियां कम नहीं होती हैं। माना ये उन्होंने फील किया कि जैसे बाबा उनसे बात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मुझे जरा भी कष्ट की महसूसता नहीं थी इन दो दिनों में, जैसे मैं बिल्कुल हल्का और शरीर से न्यारा था, और देखने में ऐसा लग रहा था कि आत्मा कितना दर्द झेल रही है। माना अब मशीनों पर हैं, सब नलियां लगी हुई हैं, तो कैसा कैसा देखने वालों को महसूस होता है, ऐसा महसूस होता है ना, कितना कष्ट उठा रही है आत्मा। जैसे हम दादियों के लिए सोचते हैं कई बार, मुझे याद है हम बड़ी दादी जी के साथ थे, तो कुछ लास्ट के कुछ महीने जो हैं दादी बिस्तर पर थी। अभी जैसे हमारी गुलजार दादी जी के लिए हम योग करते हैं, तो कईयों को संकल्प चल जाता है कि हमारी दादी इतनी तपस्वी हैं, इतने समय की उनकी साधना सेवा है, तो फिर इस तरह का की भोगना, तो हमें हमारे में मन में वो शब्द आता है भोगना, पर वास्तव में वो भोगना नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि बाबा उनको कैसे अनुभव कराता है। बाबा उनको बिल्कुल वो कर्मातीत स्थिति का जो अनुभव है, वो अपने डबल लाइट स्थिति में ही होते हैं, बाबा के साथ ही होते हैं। देखने वाले को लगता है कि आत्मा जैसे कुछ कुछ भोग रही है या कुछ कष्ट उठा रही है, लेकिन भगवान की शक्ति जो है वो उन्हें अलग अनुभव कराती है। और हमारा सहयोग जो हम उनके प्रति योग करते हैं, वो भी अवश्य उनको मिलता है। मुझे याद है बड़ी दादी जी 2 महीना वेंटिलेटर पर थे, और सभी ने उनके लिए, पूरे ब्राह्मण परिवार ने उनके लिए योग किया, और 2 महीने के बाद एक ऐसा डॉक्टर मिला जिसने दादी जी का वेंटिलेटर हटा दिया। नहीं तो उस हॉस्पिटल के जो भी डॉक्टर थे, उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो दादी का वेंटिलेटर हटा पाए। तो जब वो हट गया, तो फिर उस समय उन्होंने कहा कि ये मिरेकली है, माना इतनी आयु में 2 महीने से लगा हुआ वेंटिलेटर हट जाए, ये असंभव जैसे संभव हो गया। तो कौन सी शक्ति से वो असंभव संभव हो जाता है? तो वो शक्ति जो हमने दुआओं की, जिसको बाबा दुआओं की ताकत कहता है, जो शुभ भावनाओं की ताकत है, शक्ति है, वो कार्य करती है। तो ऐसे हम दूसरों के स्वास्थ्य के प्रति सहयोग देते हैं। हम सब अनुभवी हैं, हम करते रहते हैं ये प्रयोग। आप सब अपना हाथ उठाएंगे कि जिन्होंने ऐसे प्रयोग किए और उनको उसकी सफलता मिली, हाथ उठाएं। देखो कितने भाई बहने हाथ उठा रहे हैं, अभी 50 के करीब होंगे। और ऐसे ही खुद के लिए भी, हमने खुद के लिए भी किया। ऐसी बीमारियां जिसके लिए डॉक्टर के पास ऐसा कोई इलाज नहीं होता है, कहेंगे नहीं बस ऑपरेशन ही हो सकता है, ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। अब मैं अपना तो नहीं सुनाती हूँ, एक मैंने अनुभव पढ़ा था ज्ञानामृत में। तो ज्ञानामृत में वो भाई ने ऐसे अपना अनुभव लिखा कि वो ज्ञान में नहीं आया था, ज्ञान में आने के पहले से उसको डाइजेस्टिव सिस्टम यानी अपना पाचन की बीमारी थी, यानी कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता था उसको, वो खाएगा तो उल्टी हो जाएगी यानी तो दस्त हो जाएगा। तो वो बहुत जैसे इलाज कराना, डॉक्टरों को दिखाना, सब कुछ कर लिया, लेकिन कोई ऐसा फायदा नहीं मिलता था उसको। फिर उसको कोई उसका दोस्त ब्रह्मा कुमारी इसमें ले आया, यहाँ उसने ज्ञान सुना, कोर्स किया, मुरली सुनने लगा। तो मुरलियों में कई बार बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ही अविनाशी सर्जन है, बाबा सुप्रीम सर्जन है और याद सबसे बड़ी दवाई है, ऐसे एक पॉइंट जैसे उसकी बुद्धि में वो गई। तो फिर उसने ये, और फिर ये भी पता चला, कुछ क्लासेस होते हैं अपने हेल्थ के संबंधित, अपने डॉक्टर्स लेते हैं क्लासेस, तो कैसे हम हेल्थ प्रयोग के प्रयोग करें, जैसे हम कैट प्रोग्राम का सुनते हैं जो डॉक्टर सतीश गुप्ता जी करते हैं यहाँ पर हार्ट पेशेंट्स के लिए, कि कैसे हार्ट पेशेंट्स अपने ब्लॉकेजेस को खुद खोल सकते हैं। अभी तक कितने हजार मरीज जो हैं वो बिना बाईपास सर्जरी के ठीक हो गए। तो उसकी पूरी विधि बताते हैं कि कैसे बाबा की शक्तियों को हमें हार्ट पर लेना है और ये देखना है कि मेरे हार्ट के ब्लॉकेजेस खुल गए हैं। और सचमुच 6 महीने 1 साल के अंदर अंदर उनके ब्लॉकेजेस खुल जाते हैं, थोड़ा लाइफस्टाइल भी चेंज करते हैं। खाना पीना तो हमारा सात्विक होता ही है, पर उसके साथ एक्सरसाइज कैसे करनी है और अब स्ट्रेस फ्री कैसे रहना है। बाबा के बच्चे तो वैसे भी स्ट्रेस फ्री रहते ही हैं, हम तो, हमको बाबा ने बेफिक्र बादशाह बनाया है, कोई भी फिक्र है हमें बाबा को दे देनी है, अपने अपने ऊपर कोई बोझ नहीं रखना है। या ज्ञान की कोई भी पॉइंट यूज करके हम अपनी फिक्र को, अपनी चिंता को सहज खत्म कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसके भी मिलते हैं। तो उसने ऐसे ही किया प्रयोग कि उसने अपने लिए दो स्वमान लिए, एक तो मैं पवित्र आत्मा हूँ और पवित्र आत्मा सफेद पवित्रता की किरणें मेरे जो स्टमक है उस पर पड़ रही हैं, और उसकी जांच में ये आया था जो एंडोस्कोपी करते हैं कि उनके पेट में छाले हैं, काफी छाले हैं, मतलब शुरू से लेकर के कुछ बीच तक इतने छाले बने हुए हैं। तो वो सब ठीक हो रहे हैं, वो पावर से वो सब ठीक हो रहे हैं, ऐसे विजुलाइज किया योग के बाद, जैसे अमृत वेला योग किया, अनुमा शाम योग किया, मतलब एक एक घंटा उसने निश्चित रखा कि मुझे 1 घंटा योग करना है और योग के बाद मुझे ये विजुलाइज करना है। फिर दूसरा उसने लिया, मैं मास्तु सर्वशक्तिवान हूँ और वो जो शक्तियों की किरणें हैं वो मेरे पाचन तंत्र को मजबूत बना रही है, स्वस्थ बना रही है। उसने कहा कुछ महीनों के अंदर ही जो मैं सालों से इलाज कर रहा था वो इलाज नहीं लगता था, कुछ महीनों के अंदर ही मेरा डाइजेशन अच्छा होने लगा और जो मेरे को बहुत जलन होती थी, कभी कभी बहुत दर्द भी उठ जाता था, वो भी कम होने लगा। और फिर पहली बार मधुबन आया, जब पहली बार मधुबन आने का चांस मिला तो बोला कि मैं पूरा खाना खाने की हिम्मत कभी नहीं करता था, मिर्च मसाले तो बहुत दूर की बात है, खा ही नहीं सकता था, लेकिन यहाँ आकर के जैसे कि बाबा के सामने मैंने कहा, अलग से तो यहाँ खाना बना के नहीं मिलेगा, ऐसे तो पेशेंट किचन है पर नहीं मालूम होगा, पहली बार आया, बोला जो बाबा खिलाएगा वो मैं खाऊंगा। तो उसने देखा कि जो ब्रह्मा भोजन मैंने यहाँ खाया वो पहली बार मैंने पूरा खाया और मुझे कुछ भी नहीं हुआ, ना मुझे उल्टी हुई ना दस्त हुआ, और उसके बाद यहाँ से जाने के बाद धीरे धीरे मेरी सारी दवाइयां भी छूट गई और मैं बिल्कुल हेल्दी हो गया। तो बात है मन की, क्योंकि रोग की जड़ कहाँ होती है, मन में होती है। जब हमारा मन स्वस्थ होता है, मन शक्तिशाली होता है तो तन भी स्वस्थ होने लगता है। इसलिए बाबा कहता है तन का रोग हमें सूली से कांटा अनुभव होता है, या वो हमें उतना दुख और तकलीफ का अनुभव नहीं कराता है। आज डॉक्टर भले दवाइयां देते हैं लेकिन दवाइयों के साथ साथ वो मन को स्वस्थ नहीं कर पाते, लेकिन जो दवा के साथ साथ दुआ है, यानी बाबा की याद की शक्ति है, और जो ज्ञान से हमारा मन, जो हमारी भावनाएं शुद्ध होती हैं, वो हमारे लिए डबल काम करता है। तो हम अपने लिए भी उसका प्रयोग कर सकते हैं, केवल दूसरों के लिए प्रयोग करने की ही बात नहीं है। फिर प्रकृति के लिए बाबा हमें कहते हैं, क्योंकि प्रकृति को भी हमें सत्व प्रधान बनाना है। प्रकृति को हम ज्ञान नहीं सुनाएंगे, ज्ञान सुना के प्रकृति की सेवा नहीं हो सकती है। सत्व प्रधान प्रकृति हमारी सत्व प्रधान वाइब्रेशन से बनेगी, तो वो वाइब्रेशंस देना, उसके भी बहुत सारे प्रयोग विज्ञान में भी किए हुए हैं। जैसे एक कहानी मुझे याद आती है, कैसे हमारे वाइब्रेशन का प्रभाव पेड़ पौधों पर पड़ता है। तो एक बार एक राजा था, उसका ध्यान गया कि जो हमारे पड़ोसी राजा हैं वो लंबी आयु जीते हैं, लेकिन हमारे जो राज्य के राजा हैं वो कम आयु में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसने सोचा क्या राज है, कैसे वो राजा लंबी आयु जीते हैं। तो उसने अपना एक दूत भेजा उनके राज्य में कि आप ये पता लगाकर आओ कि वो ऐसा क्या भोजन खाते हैं या ऐसा क्या कुछ लेते हैं कि जिससे उनकी आयु लंबी होती है। तो वो गया और वहां उसने ये प्रश्न उनके सामने रखा कि हमारे राजा ने ये जानने के लिए आपसे भेजा है। तो उसने कहा कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। उसके लिए एक शर्त है, आप हमारे अतिथि गृह में गेस्ट हाउस में रहो और गेस्ट हाउस के सामने एक पेड़ है, उस पेड़ के सूखने के बाद ही आपको प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तो उसको लगा ये क्या शर्त है। फिर उसने देखा पेड़ तो बहुत हरा भरा है, वो तो कभी सूखने वाला ही नहीं है। तो उसको लगा राजा को उत्तर नहीं देना है, मेरी सारी जिंदगी यहीं बीत जाए, इसलिए उसने ऐसी शर्त रख दी जो पूरी ही ना हो क्योंकि मैं उत्तर लिए बिना जा नहीं सकता यहां से, कुछ नियम होते होंगे वो दूध के। तो वो रहने लगा वहां क्योंकि अब जो कहा गया वो करना ही है। लेकिन अब क्या होता था, जैसे ही वो अपने गेस्ट हाउस से बाहर आता था, पेड़ को देखता था, तो उसके मन में वो संकल्प चलता था कि कब ये पेड़ सूखेगा और कब मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तो जितनी भी बार वो आता जाता था उतनी बार उस पेड़ को देख करके उसके यही संकल्प चलते थे। तो उसने देखा कि कुछ महीनों के अंदर वो पेड़ थोड़ा सूखने लगा। तो उसको थोड़ा आश्चर्य तो हुआ, हरा भरा पेड़ थोड़ा सूख रहा है। फिर उसने वही जारी रखा तो देखा और कुछ महीनों के अंदर पेड़ सूख रहा है, और लगभग एक साल आते आते तक तो वो पेड़ अच्छी तरह सूख गया, पूरा ही सूख गया। तो बहुत खुश हुआ, उसने कहा कभी मैंने सोचा नहीं था कि ये पेड़ सूख जाएगा, पर देखो ये पेड़ सूख गया, मेरी किस्मत है। तो वो गया राजा के दरबार में और कहा कि महाराज आपकी शर्त मैंने पूरी कर दी, वो पेड़ सूख चुका है, अब मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए ताकि मैं अपने राज्य वापस लौट सकूं। तो उसने कहा यही आपके प्रश्न का उत्तर है। उसने कहा कैसे। उसने कहा अच्छा आप पेड़ को देखकर क्या सोचते थे। उसने कहा यही सोचता था कि पेड़ कब सूखेगा। तो उसने कहा देखो आपके उस संकल्प ने, इस विचार ने इस हरे भरे पेड़ को सुखा दिया। तो वो जो राजा है, राजा के प्रति प्रजा की जैसी भावनाएं होती हैं, जैसे विचार होते हैं, उस अनुसार उसके जीवन पर उसका असर होता है। अगर प्रजा राजा के प्रति दुआएं करती है, वो कब दुआएं करेगी, जब राजा प्रजा को सुख देगा। तो प्रजा की दुआएं होंगी, हमारा राजा जुग जुग दिए, इसकी आयु लंबी हो, तो वो लग जाता है और राजा की आयु लंबी होती है। अगर राजा प्रजा को दुखी रखता है तो प्रजा क्या सोचने लगेगी, कब इस राजा से हमें मुक्ति मिल जाए, कितना जल्दी ये, तो क्या होगा। तो राज समझ में आ गया। जैसे कई बार बाबा हमारी दादियों को कहते हैं, हमारी दादियों की आयु कैसे बढ़ती है, दुआओं से। जितना उनको परिवार की दुआएं मिलती हैं उतना ही उनकी और आयु लंबी होती जाती है। तो इतनी ताकत है उसमें, हमारे विचारों में, भावनाओं में। तो यहाँ हम और भी देखते हैं जो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए, जैसे हम सुनते हैं जापान के साइंटिस्ट हैं, वो मसारू इमोटो नाम है उनका, उन्होंने पानी के ऊपर प्रयोग किए, पानी को कई उन्होंने उसमें बांटा हिस्सों में और उनके ऊपर अलग अलग फीलिंग्स के थॉट्स लिख दिए, किसी के ऊपर लव लिखा, किसी के ऊपर मर्सी लिखा, किसी के ऊपर हेट लिखा, किसी के ऊपर रिवेंज लिखा। मतलब कहा लोगों को कि जैसे लव लिखा है तो उसको देख करके प्रेम की भावनाएं अपने अंदर पैदा करें, मतलब वो उसको दें, भाव दें उस पानी को। फिर उन्होंने उसको फ्रीज कर दिया, बर्फ को जमा दिया, और उसके बाद वो क्रिस्टल देखे तो देखा जो पॉजिटिव भावनाओं वाला पानी के सैंपल थे उनके क्रिस्टल बहुत सुंदर थे, वेल फॉर्म्ड थे, लेकिन जो नेगेटिव फीलिंग्स, जिसमें हेट्रेड था, जिसमें रिवेंज था और भी, तो उनके जो क्रिस्टल थे वो फॉर्म ही नहीं हुए थे, और अगर हुए भी तो थे तो बहुत जैसे कोई शेप ही नहीं था उसका, इस तरह के थे। तो यहां पर भी उन्होंने ये बताया कि हमारे शरीर में 70% पानी है, और अगर हमारे मन में ऐसे विचार चलते हैं, मानो नेगेटिव विचार चलते हैं, तो उसका असर हमारे शरीर पर होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस में जब हम होते हैं, तो हमारी फीलिंग्स नेगेटिव हो जाती हैं, नेगेटिव विचार होते हैं मन के अंदर, तभी स्ट्रेस होता है, तो वो बीमारियां पैदा करता है। 80% बीमारियां तनाव के कारण होती हैं, ऐसा हम कहते हैं। क्यों होती है? उसका कारण यही है कि जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं उसका हमारे शरीर के तत्वों पर असर हो रहा है। आज हम ब्रह्मा भोजन का महत्व कहते हैं। ब्रह्मा भोजन क्यों ब्रह्मा भोजन कहलाता है? बाबा की याद में हमने उसे बनाया और बाबा को भोग लगाया, तो वो जो हमारी शुद्ध पवित्र वाइब्रेशंस हैं वो उस भोजन को शक्ति देते हैं, और वो भोजन जब हम खाते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए, मन के लिए शक्तिशाली है। मन को शुद्ध बनाने वाला भोजन है, मन को सात्विक स्थिति में ले जाने वाला भोजन है, जिसको बाबा दुख भंजन भोजन कहते हैं। तो प्रकृति पर हमारे वाइब्रेशंस का प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे ही एक और एक्सपेरिमेंट किया वैज्ञानिकों ने, 3 लोगों को लिया और उनको गमले दिए, एक पौधा दिया। एक स्वस्थ व्यक्ति था, स्वस्थ और प्रसन्न। दूसरा व्यक्ति जो था वो थोड़ा डिप्रेस था, माना जैसे होता है जिनका उदासी का स्वभाव होता है, खुशी होती नहीं है जीवन में। और तीसरा व्यक्ति पागल था। इन तीनों को दिया कि वो पौधे को संभालेंगे, पानी वानी देंगे, उसको खाद देंगे, बड़ा करेंगे। तो परिणाम क्या देखा कि जो स्वस्थ व्यक्ति को पौधा दिया गया था उसका बहुत अच्छा विकास हुआ, लेकिन जो डिप्रेस व्यक्ति के पास पौधा था, पौधे एक जैसे थे, उसका विकास सही नहीं हुआ, हुआ लेकिन इतना नहीं, जैसे मुरझाया हुआ सा था। और जो पागल व्यक्ति को दिया था वो पौधा तो सूख ही गया, खत्म ही हो गया वो पौधा। तो जैसे वाइब्रेशंस वो दे रहे थे पौधों को, वैसा ही उसका विकास हुआ। तो हम यौगिक खेती के प्रयोग करते हैं आजकल, यौगिक खेती के बारे में सुनते हैं ना, तो वो क्या है? हमने योग के वाइब्रेशंस खेती को दिए तो उसके रिजल्ट्स मिले हैं। इसकी रिसर्चर्स की यूनिवर्सिटी ने, कि हम केवल यौगिक खेती की बात कर रहे हैं या इसके कोई रिजल्ट भी मिलते हैं, तो जब यूनिवर्सिटीज ने रिजल्ट देखे तो देखा कि जिन खेतों में योग किया गया उन खेतों की फसल जो नॉर्मल खेत होते हैं उससे अधिक थी, मतलब क्वांटिटी में भी अधिक, प्लस उसकी क्वालिटी यानी उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी अच्छी थी। तो अंतर पड़ता है उसमें। तो सतयुग में जो प्रकृति होगी वो इसी प्रकार की होगी, क्योंकि सतो प्रधान आत्माएं हैं, तो सतो प्रधान आत्माओं से जो प्रकृति को वाइब्रेशंस मिलेंगे उस आधार पर प्रकृति भी सुख देने वाली होगी। हम वहां के फल फूल अनाज कैसे होंगे, बाबा हमें वर्णन करके बताते हैं ना किस तरह के फल फूल अनाज होंगे, क्योंकि वैसे ही उनको वो वाइब्रेशंस मिलते। प्रकृति पर मनुष्य आत्माओं का ही प्रभाव पड़ता है। तो इतने बड़े जो ये आज बेहद का विश्व है, इसमें प्रकृति का परिवर्तन करना, प्रकृति को पावन बनाना, ये भी हमारी जिम्मेवारी है, हमें ये कार्य करना है। तो अपने मनोबल को, अपनी एकाग्रता की शक्ति को हम कैसे बढ़ाएं? तो उसके लिए हमें अपने मन पर अटेंशन देना होगा। सारा दिन मेरे मन में क्या चलता रहता है? कई बार हम, भले ही हम राजयोगी हैं, लेकिन इतना हम मन पर अटेंशन नहीं देते हैं। छोटी छोटी बातों में हमारा मन बिजी रहता है, यानी व्यर्थ संकल्प, जिसे बाबा कहते अभी भी मुरली चली, बाबा ने हमारा अटेंशन खिंचवाया इस पर, कि बहुत व्यर्थ संकल्प मन में चल रहे होते हैं और हमें मालूम भी नहीं होता है कि मेरे इतने व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं। हम किसी की बातें सोच रहे हैं, बीती हुई बातें सोच रहे हैं, उसको पर दर्शन, पर चिंतन हम कहते हैं। फिर कई बार विकारों के वश भी हमारे मन में संकल्प आ जाते हैं। अगर विकारों के वश संकल्प चले तो फिर वो हमारे मन की शक्ति को कई गुना नष्ट कर देते हैं, एकदम मन की पावर ड्रेन हो जाती है, मन एकदम कमजोर हो जाता है, जिसको हम कहेंगे जैसे बल्ब फ्यूज हो गया, उसकी लाइट ही नहीं है, तो उस तरह से। हाँ, अभी भी लाइट चली गई, तो ऐसे ही हमारे मन की स्थिति हो जाती है जब हम कोई भी विकार के वश हुए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और उसमें भी काम विकार सबसे ज्यादा। किसी आत्मा के प्रति अगर कोई लगाव चुकाव है तो बाबा उसको लीकेज कहता है, कि हम याद करते हैं बाबा को, बाबा की याद से हम शक्ति भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आत्मा बीच बीच में हमारे मन को खींच लेगी। जिसके प्रति लगाव होगा, माना एक्स्ट्रा स्नेह जिसको बाबा हमेशा कहते हैं, तो वो याद आती रहेगी, और जब वो याद आएगी तो हमारा आत्मा के साथ हिसाब किताब बनता है, वो कर्म की गति के अनुसार। और फिर ऊपर से तो हम योग से शक्ति भरने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हम कहेंगे एक बाल्टी में हम पानी भरते हैं और नीचे अगर छेद है तो क्या होगा, भरेगा नहीं, ऊपर से भरेगा, नीचे से खाली होता जाएगा। तो ऐसे ही हमारे मन की शक्ति भरती नहीं है, और हम महसूस करते हैं कि हम इतना योग करते हैं, उतना ज्ञान का अभ्यास करते हैं, लेकिन फिर भी जो पावर हमें होनी चाहिए वो पावर नहीं है, मन के अंदर वो शक्ति की महसूसता नहीं है। तो ज्ञान का चिंतन, एक तो विकारों से मुक्त हो मन, जिसको हम कहेंगे हमारे मन में अशुद्धियां ना हो किसी भी प्रकार की, और फिर उसके साथ साथ ज्ञान का मनन चिंतन चले। मनन चिंतन करने की भी आदत हमें कम होती है, मुरली सुनने की आदत है जरूर, वो हमारा नियम है, तो हम नियम से मुरली सुनते हैं, मुरली सुनकर हम खुश भी होते हैं, थोड़ी हमारी बैटरी चार्ज भी होती है, लेकिन अगर हमने उसको रिवाइज नहीं किया, अगर हमने उसको अपने मन में नहीं चलाया, तो वो ज्ञान हमारा अपना नहीं बनता है, यानी वो ज्ञान शक्ति का रूप नहीं लेता है। जैसे भोजन हजम होने के बाद ही शरीर को शक्ति मिलती है, अगर हजम नहीं होगा तो शक्ति नहीं मिलेगी, तो यहाँ भी वो ज्ञान फिर काम नहीं करता है, जिसको बाबा कहते हैं शुद्ध संकल्पों की शक्ति। तो हमारे पास तो आज बहुत सहज साधन है ज्ञान को रिवाइज करने के, और अगर मनन करना है तो थोड़ा एकांत चाहिए, तो हम सब अपने लिए हर दिन थोड़ा एकांत का समय भी रखें, जब हम सिर्फ अपने साथ हैं और कोई हमारे साथ ना हो, जिसको बाबा कहते हैं अंतर्मुक्ता में हम जाएं, यानी डीप साइलेंस का हम अनुभव करें। जितना हम शांति की शक्ति को बढ़ाएंगे उतना हमारे मन की शक्ति बढ़ेगी, उतना हमारी मनसा पावरफुल होगी। तो हमें ये सोचना है, बाबा ने ये बात कही, ये ज्ञान का राज, आज भी जैसे बाबा ने कहा ना कि भगवान जो सुनाता है वो गतमत न्यारी है, दुनिया में और कोई ऐसा ज्ञान नहीं सुना सकता है। हम सब जानते हैं जो बाबा ने बातें सुनाई आज तक हमें दुनिया में किसी ने सुनाई क्या। तो हम उसको जब चिंतन में लाते हैं, स्मरण में लाते हैं, आत्मा का ज्ञान, कितना अद्भुत ज्ञान बाबा ने दिया, उस ज्ञान से कितना हमारे जीवन में परिवर्तन आया, हमें कैसे यूज करना है इसे, किस टाइम यूज करना है, कौन सी परिस्थिति में ये आत्मा का ज्ञान मुझे विजय दिलाएगा, दूसरों की सेवा मुझे आत्मा के ज्ञान से कैसे करनी है, ऐसे थोड़ा उसकी गहराई में जाना। नहीं होता है कई बार तो हम लिख भी सकते हैं उसको, थोड़ा लिख करके हम उसका अभ्यास करें, और या नहीं तो बीच बीच में रिवाइज कर लें। मोबाइल हमारे हाथ में होता ही है आजकल, तो मुरली हमें सहज मिलती है, कोई भी सोशल मीडिया पे मुरली होती है आजकल, तो बीच में हम थोड़ा सा उसको रिवाइज ही कर लें, तो भी हमारे मन की स्थिति बदल जाएगी। मानो आप किसी दूसरी बात से लेकर के थोड़ा सा अशांत हो गए, या कोई भी ऐसे मन में परेशानी आ रही है, कुछ टेंशन आ रहा है, तुरंत हमने वो अपनी मुरली खोली और उसको हमने थोड़ा सा रिवाइज किया, उसमें कोई ना कोई बात जरूर ऐसी होगी जो हमारे मन को हल्का कर देगी, बाबा ले लेता है उसको, जैसे ही हमने बाबा की तरफ मन किया, बाबा कहते हैं ना, मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार, बाबा की पढ़ाई याद आई, माना किससे योग लगा हमारा, पढ़ाने वाले से योग लग गया। तो जैसे ही बाबा के साथ योग लगा, पावर हाउस से हम जुड़े, वो पावर हमारे अंदर आएगी और पावर आते ही वो सब डिसॉल्व हो जाएगा। और जब हम मनसा सेवा करते हैं आत्माओं की, तो हमें ये बहुत जरूरी है कि बाबा के साथ हमारा डीप कनेक्शन और रिलेशन हो। जब वो डीप कनेक्शन होता है, तभी हमारी करंट उन आत्माओं तक पहुंचती है। बेस्ट समय है अमृत वेले का समय, अमृत वेला या नुमा शाम का समय। अमृत वेले का समय इसीलिए क्योंकि अमृत वेले हमें हमारे मन का भी सहयोग है और प्रकृति का भी सहयोग है। प्रकृति जो है वो शांत है, प्रकृति सतो प्रधान होती है उस समय, क्योंकि मैच्योरिटी आत्माएं सोई हुई हैं, तो उनका तमोगुण दबा हुआ होता है, तो उनकी इंटरफेरेंस नहीं होती है, जिसको कहते हैं लाइन क्लियर होना। तो हम जिस आत्मा के प्रति जो संकल्प करेंगे वो सीधा उस तक पहुंचेगा, और उसका सबकॉन्शियस माइंड खुला होता है, क्योंकि अगर वो आत्मा सो रही है तो उनका सबकॉन्शियस माइंड ओपन होता है, तो उसकी ग्रहण शक्ति भी ज्यादा होती है, तो वो सीधा उसमें रजिस्टर हो जाएगा जाकर के। तो अमृत वेले के समय हमने पावरफुल योग किया आधा घंटा, और फिर जिस आत्मा के प्रति हमें सहयोग देना है, 5 या 10 मिनट बाबा के सामने उसको विजुलाइज करते हुए, बाबा से शक्ति लेते हुए, हम उसको आत्मा के रूप में भी देख सकते हैं, हम उसको फरिश्ते के रूप में भी देख सकते हैं कि वो लाइट के आकारी शरीर में है, बाबा के सामने है, और मेरे द्वारा बाबा जो है उस आत्मा को जो हम सहयोग देना चाहते हैं वो उसको सहयोग दे रहा है। इस तरह से हम मनसा सेवा करें। फिर हम जो भी इस संसार में प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उसमें बहुत आत्माएं असमय, जिसको अकाले मृत्यु बाबा कहता है, उनकी अकाले मृत्यु हो जाती है। तो अकाले मृत्यु जिसकी हो गई उसका तो कुछ नहीं, लेकिन जो उनके संबंधी होते हैं, जो उनके साथी होते हैं, वो बहुत दुख से गुजर रहे होते हैं उस समय। तो बाबा हमेशा कहता है ऐसे समय पर हमारा फर्ज है, क्योंकि हम बाबा के राइट हैंड हैं। जैसे बाबा दुख हरता सुख करता है, ऐसे ही हमें भी बाबा के समान पार जाना है, उनके प्रति रहम दिल बनना है, उन्हें सहयोग देना है। अब हम स्थूल सहयोग तो कम करते हैं, वो तो समाज सेवी संस्थाएं हैं, पहुंच जाती हैं उस समय तुरंत उनको आपदा से निकालने के लिए, लेकिन हम कम से कम मन का सहयोग, जो दुआओं का सहयोग है, उस आत्माओं के प्रति शांति का सहयोग है, वो सहयोग तो हम दे सकते हैं। तो ऐसे समय पर हमें विशेष योग उन आत्माओं के प्रति और उस स्थान को विशेष अपने ध्यान में रखते हुए हमें करना चाहिए। और हर साल ऐसी कोई ना कोई दुर्घटना इस संसार में होती है, चाहे वो तूफान आते हैं, चाहे वो बाढ़ आती है, चाहे या सुनामी आती है, भूकंप होते हैं, कुछ ना कुछ होता ही है, ऐसी कोई बड़ी दुर्घटना भी हो जाती है कहीं कहीं। और ऐसे ही हमें जहां हम रहते हैं, हमारा घर, जिसको बाबा कहते हैं वृत्ति से वायुमंडल बनाना, तो हमारी वृत्ति इतनी पावरफुल हो, हमारे घर का वायुमंडल भी शांति वाला हो, पवित्रता वाला हो, तो कोई भी आत्मा हमारे घर में आए तो महसूस करे हम आश्रम में आ गए, हम किसी गृहस्थी के घर में नहीं आए। और ऐसा कई बाबा के बच्चों के घरों से महसूस भी होता है कि इनके घर में आते हैं तो बहुत शांति मिलती है ना। उसके साथ साथ स्थूल स्वच्छता भी चाहिए कि स्थूल रूप से भी घर व्यवस्था, लेकिन साथ साथ अगर हमारे वाइब्रेशंस पावरफुल है, हमारी वृत्ति पावरफुल है, उसका प्रभाव भी हमारे घर के वातावरण पर पड़ता है, तो हमारे घर का वातावरण भी सेवा करता है। बाबा हमेशा कहता है जो लास्ट सेवा है वो है वृत्ति से वृत्ति का परिवर्तन करना। लास्ट में आपको ज्ञान सुनाने का टाइम नहीं मिलेगा। अभी भी कोरोना के टाइम हम ज्ञान सुना सके क्या? घर में ही बैठे थे तो क्या कर रहे थे? सब मनसा ही, मनसा सेवा ही कर रहे थे, है ना? तो वो समय तो दूर नहीं है अभी, लेकिन वो अभ्यास तो हमें अभी से करना है ना, कि हमारी मनसा इतनी पावरफुल रहे कि हम अपनी से वायुमंडल को बदल सकें। सेंटर पर भी होता है, सेंटर पर भी मानो कोई विघ्न आता है, कोई परिस्थिति होती है, हम कहते हैं योग करो, तो जितना हम योग पावरफुल करेंगे उतना सहज ही विघ्न समाप्त हो जाएंगे। सेंटर पर कोई भी आते हैं उन्हें क्यों शांति मिलती है, उसका कारण यही है कि सेंटर पर योग तपस्या चलती रहती है समय प्रति समय, तो वो बाहर में अशांति के वातावरण से आया है और सेंटर आते ही उसका मन एकदम, जैसे हम मधुबन में आते हैं हम सब क्या फील करते हैं, है ना, दुनिया से मधुबन में आते हैं तो कैसा लगता है, कोई दूसरी दुनिया में आ गए, हाँ, बहुत शांति आनंद पवित्रता नेचुरल अनुभव होती है, क्योंकि जो भी यहाँ बाबा के पीछे रहते हैं उनकी तपस्या से वो वायुमंडल बना हुआ है। और भी पावरफुल अनुभव हमें कहाँ होता है, जब हम पांडव भवन जाते हैं, क्योंकि पांडव भवन में हमारे बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने, हमारी सभी दादियों ने तपस्या की हुई है, उनके बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस हैं उस भूमि पर, तो वो अनुभव और भी हमें पावरफुल होता है। तो ये हमें अपनी मनसा से लक्ष्य रखना है कि हमारे घर का, हमारे सेंटर का, हमारे शहर का, विश्व का तो हम कर ही रहे हैं, विश्व तक वो कितना पहुंचता है वो तो हमारी पावर पर डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम अपने स्थानों का जो वायुमंडल है वो हम अपनी मनसा से पावरफुल और निर्विघ्न बना करके, ताकि जो भी आत्माएं आए वो ऐसा अनुभव करके जाए कि उस अनुभव को वो नहीं भूल सके। बाबा कई बार कहते हैं आपने जो भाषण दिया, ज्ञान सुनाया, वो भूल जाएंगे, वो इतना याद नहीं रहेगा, क्या याद रहेगा, जो अनुभव किया उन्होंने वो अनुभव वो कभी भी नहीं भूलेंगे, वो अनुभव उनको खींच करके लाएगा कि वो शांति मिली थी वहां पर, अब मुझे शांति चाहिए तो कहां जाना है, उधर ही जाना है। तो इस तरह से अंतिम समय के लिए हमें अभी से तैयार होना है, जो बाबा ने हमें पहले से ही, बाबा तो हमें लास्ट पेपर भी पहले से ही बता कर रखा है, सभी बाबा ने हमें तीनों कालों का ज्ञान दिया है, तो उस अनुसार ये सेवा हमारी अधिक से अधिक सफलता पूर्वक हम कर सकें। सेवाएं तो सभी करनी है, जैसे बाबा ने उस दिन कहा कि तीनों प्रकार की सेवा हमारी निरंतर चलती रहे, लेकिन जो मनसा सेवा है उसके लिए अगर हम सूक्ष्म अभ्यास करेंगे, क्योंकि ये स्थूल नहीं है और जब तक हम इसको अटेंशन नहीं देंगे तब तक हम उसमें उतना सफल नहीं हो सकेंगे, तो मनसा से हम सहज ही विश्व सेवाधारी बन जा रहे हैं। ओम शांति। शाम को